अब मेरे ख्याल में यहां क्या हुआ है
बाबा? संदूक, संदूक कहां गया?
संदूक? अहदीस का संदूक? खुदारा रहम कर।
अहदीस का संदूक? बाबा, अहदीस का संदूक खाली है।
परेशान ना हो बेटी, मैंने इसे यहां छुपा दिया था। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने खुद इनकी हिफाजत फरमाई।
खुदा का शुक्र है।
सलाम। मैं जानता हूं कि मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं आपके पीछे क्यों आया था?
सलाम। कौन हमारे बाद यहां आया था?
पहले मेरे काम की कीमत अदा करें।
उसका नाम क्या था?
पहले कीमत अदा करो।
जल्दी बताओ।
मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसके चेहरे से वाकिफ हूं।
पहचान लिया तुमने? कौन था वो?
लेकिन इतना जानता हूं कि बाजार में उसकी एक दुकान है और वो कपड़ा बेचने का कारोबार करता है।
आमिर, खुदा की लानत हो तुम पर।
भाईजान, आमिर कपड़ा फरोश की दुकान कौन सी है?
वो उस घर के सामने।
अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
आमिर आप ही हैं?
फरमाइए।
मैं बसरा के हाकिम का खत आपके लिए लाया हूँ।
हाकिम बसरा?
आपको कुछ कहना तो नहीं? खुदा हाफिज आमिर।
वालेकुम सलाम। फरमाइए।
खुदा का शुक्र, हमारी आंखें आपके दीदार से मुनव्वर हुई।
शुक्र खुदा हर हाल में वाजिब है, चाहे तुम मुझे देखो या न देखो।
यकीनन कोई अहम काम पेश आया होगा, ज़हमत करके कुछ हमें भी तो इस बारे में बताएं।
तुम जानना चाहते हो?
हाँ बिल्कुल।
बस बेहतर है, पहले अपने कान तेज और सूंघने की कुव्वत को कवी तर करो। इस सूरत में तुम बगैर सवाल किए दूसरों के राज जान पाओगे। समझ गए तुम? समझ गए ना?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
तुम्हें एक दिन कैद न करवा दिया तो मेरा नाम बदल देना मोमिन तमाकार।
जब तक तुम सारा सामान बांधो मैं आमिर की तरफ चक्कर लगा कर आता हूँ।
बाहर खतरा है, मैं आपके साथ चलती हूँ।
या अल्लाह,
जाबिर की आवाज है।
अंदर आने की इजाजत है?
अंदर तशरीफ लाएं हकीम।
अस्सलाम वालेकुम।
खुश आमदीद जाबिर, आए आए आए।
सलाम वालेकुम। सफर का इरादा है आपका?
हाँ, जरारा का सुराग लगाने के लिए कूफा छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम भी हमारे साथ आओगे?
हाँ जरूर आऊंगा, लेकिन इस सफर में हमें किसी और की भी जरूरत है ताकि खतरे के मौके पर हमारी रहनुमाई कर सके।
तुम किसकी बात कर रहे हो?
उसकी जिसने बसरा से कूफे तक सिर्फ आपकी खातिर सफर किया। मेरा मकसद जुबैर है।
वो राहजन? खुदा हमें उसके शर से महफूज रखे।
लेकिन ये जुबैर बसरा के जुबैर से बहुत मुख्तलिफ है। अब वो हमारे दोस्तों में से है और उसका हाल भी माजी से मुख्तलिफ है।
नहीं, वो जो कुछ भी है वो एक बदनाम राहजन है। मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता।
नहीं, अगर वो ऐसा है तो वो भी सिर्फ इश्क-ओ-आशिकी की वजह से और अब तक मुब्तिला है, और आप ही की वजह से बसरा में उसे कैद खाने में डाला गया, और कैद खाने से भागने के बाद भी वो इसी वजह से आपके पीछे आया। वो एक जुर्रतमंद और बहादुर जवान है जिसकी हमराही में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा चालाक है कि दुश्मन से धोखा नहीं खा सकता, और ऐसा दाना के बयाबां के हर रास्ते से वाकिफ है। ये सही है कि वो गलत रास्ते पर चल रहा था और कुछ अरसे से राजनी करता रहा, लेकिन हमारे दुश्मनों जैसी कोई बुराई उसमें मौजूद नहीं।
उसकी चालाकी में तो कोई शक नहीं, और मुझे इस बात का शदीद खौफ है उसकी मदद के बजाय मुझे अपने मालो असबाब और इज्जत व आबरू की हिफाजत करनी पड़े।
बेहतर है कि आप उस पर एतमाद करें। अगर उसने आपकी दोस्ती का जायका चख लिया तो आपकी खातिर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करेगा। उसकी तरफ से कोई खौफ ना रखें।
वो इस वक्त कहाँ है?
मेरे साथ आया है, अगर आप इजाजत दें तो आपके सामने हाजिर हो।
अगर वो हमारे साथ आना चाहता है तो बेहतर है कि हमारे सामने हाजिर हो।
जुबैर, अंदर आ जाओ। अब जबकि तुम हमारे हम सफर बन गए हो तो बेहतर अपनी जिंदगी बदल डालो और वो सेवा इख्तियार करो जो सबसे पहले रजाए खुदा और फिर खल्क खुदा के लिए हो। उन्वान खुदा तर्स और मर्दम दोस्त इंसान है, और वो बहुत परहेजगार और ईमानदार है। उन्वान अब तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखेगा, बेहतर है उसकी नजर में अच्छे आदमी बन जाओ। मेरी दर्स की जमात है, मुझे वहां जाना होगा, अगर तुम भी चाहो तो शिरकत कर सकते हो।
नहीं, मुझे जमात दर्स से माफ रखो, आपकी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं बाजार का एक चक्कर लगाना चाहता हूँ।
इस शहर में जितना कम निकलो बेहतर है।
जानता हूँ, पर एक जरूरी काम है, जुल्फा के लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि
ठीक है, लेकिन ख्याल रखना कि जासूसों की नजर में ना आओ।
जाबिर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं।
ये जगह बात करने के लिए मुनासिब नहीं, फिर किसी मुनासिब वक्त पर सही। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
इस किताब की कहानी भी सुनने वाली है। जिन दिनों में मदीने में अपने मौला जाफर इब्ने मोहम्मद के पास था, मैं उनके वजूद से बहरामंद हो रहा था, तो एक दिन मस्जिद में मेरी मुलाकात मशहूर मादा परस्त इब्ने अबल औजा से हो गई। उसका कहना था कि इस जहां का बनाने वाला कोई नहीं है, हर चीज खुद ब खुद वजूद में आ गई है। मुझे लगा कि कहीं मैं उसे मुनासिब जवाब ना दे सकूं, लिहाजा मैं परेशान हालत में फौरन अपने मौला जाफर इब्ने मोहम्मद के पास गया। इमाम ने मेरी परेशानी का सबब पूछा और मुझसे फरमाया कि मुफज्जिल परेशान ना हो, मैं तुम्हें खलकत कायनात में हिकमत परवरदिगार से आशना करवाता हूं और चरिंद परिंद और तमाम हैवानात के वजूद में आने, हत्ता कि तमाम जानदारों की खिलकत के बारे में, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो मोमिनीन के इल्म में इजाफे का सबब होगा और काफिरों और मुलीदों के लिए बाइस हैरत होगा, और ये किताब इन्हीं बातों का मजमूआ है।
वाकई जो कुछ भी हक्कानियत खुदा और खुदा शनासी के बारे में कहा जा सकता है वो सब इस किताब में मौजूद है।
मैं खुदा से दुआ गो हूं कि वो मुझे इन उलूम को नश्र करने की तौफीक अता फरमाए। खूब जाबिर, तुम क्या कर रहे हो और अब तक क्या किया है?
मैं भी तुम्हारी तरह एक किताब लिखने में मसरूफ हूं जिसके मतालिब सालों कबल इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद ने मुझे अता फरमाए थे।
हाँ हाँ जाबिर, हाँ, जब तुम मदीने में थे तो इमाम ने तुमसे कहा था कि तुम हर रोज इमाम के पास जाया करो और उन दोनों इमाम मुख्तलिफ उलूम के बारे में तुम्हें बताते थे। इमाम हमेशा फरमाया करते थे कि जाबिर उनमें से एक है जो कि फितरत के बारे में तजस्सुस कर सकता है और रुमूज कायनात और उसके बनाने वाले को काफिरों और मुलीदों पर साबित कर सकता है कि वो निहायत गलती पर हैं।
ये इमाम की मोहब्बत है जो हमेशा मेरे साथ रही है। एक आज दोबारा वो दिन आ जाए कि दोबारा इमाम की खिदमत में हाजिर हो सकूं और अपने जहन के सवालात उनसे हल कर सकूं।
मेरी दुआ है जाबिर कि तुम हमेशा पहले की तरह अपने काम से जुड़े रहो।
अच्छा माल भी है मेरे पास, वो देखिए, एक से एक बढ़िया चीज मिल जाएगी आपको। देखिए देखिए, ऐ मुसाफिर, तुम जिस चीज की तलाश में हो वो सिर्फ मेरी दुकान में तुम्हें मिल सकती है।
तुम्हें क्या मालूम कि मुझे क्या चाहिए?
ये कि तुम्हारा नाम जुबैर है और पसरा से यहाँ तुम आए हो, वो भी एक बड़े मकसद के तहत। एक बात फिर कह रहा हूँ, अगर मेरे पास आओगे तो हो सकता है कि हम कोई बेहतर मामला तय कर सके। मेरे पास बहुत कीमती माल है, शायद तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। आ जाओ।
मुझे उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी है वो अरसे दराज से रेजनी कर रहा है और कुछ भी करने से नहीं डरता। मैं हैरान हूं कि जाबिर जैसा दानिशमंद उस पर एतबार कर रहा है।
वाकई ये कैसे मुमकिन है? या तो जाबिर उसके फरेब में आ गया और उस पर एतमाद कर रहा है, या फिर ये कि
क्या मतलब, यानी तुम भी यही कह रही हो कि जवान ने सही राह अपना ली है?
नहीं पता, जो माजी के बारे में जानती हूँ और जो हकीम उसके बारे में कह रही है, दोनों में तजाद है।
मैं नहीं चाहता कि मेरा जाबिर पर से एतमाद खराब हो, लेकिन अगर इस लड़के जुबैर ने कोई खयानत की तो यकीनन जाबिर ने इस बारे में सोचा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा।
एक रास्ता और भी है।
कौन सा?
आप उसे अपने साथ ले चलें और पहली फुर्सत में उसे आजमाएं।
मेरा सबसे बड़ा डर तो उसे अपने साथ ले जाने में ही तो है। ये लड़का बसरा में भी रैजनी में शोहरत रखता था और इसके हाकिम बसरा से भी ताल्लुकात। अगर ये हाकिम बसरा की जासूसी के लिए हमारे साथ है और हमारे मकसद की इत्तला हाकिम को दे दे तो हमारी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी।
अगर ऐसा होता तो अब तक हाकिम के आदमी हम तक पहुंच गए होते।
नहीं, शायद जाबिर का कहना सही हो, ये जुबैर उस जुबैर की सोच से मुख्तलिफ हो। बहरहाल इस वक्त तो मुझे मोमिन के पास जाना चाहिए ताकि जितना जल्द हो सके जरारा का पता लगा सकूं।
मैं भी आपके साथ चलूंगी।
जरूरत नहीं।
जब से हशाम ने आपके दोस्तों को पकड़ा है हर वक्त आपकी फिक्र रहती है, आपके साथ होंगी तो इत्मीनान रहेगा।
अच्छा चलो, वैसे भी बाजार औरतों की पसंदीदा जगह है। चलो
बाबा।
सबसे पहले दो प्याली ताजा चूने की एक प्याली जर्द गंधक से मिलाएं, फिर उसमें चार गुना पानी इजाफा कर दें, फिर उसको पकाएं यहां तक के वो सुर्ख हो जाए, फिर उसको छान लिया जाए। उसके बाद उसमें इतना पानी मिलाया जाए कि उसकी सुर्खी जायल हो जाए। उसके बाद उसको इतना पकाएं कि उसका हजम आधा रह जाए, तो इस तरह हमें गंधक का पानी हासिल हो जाता है।
हकीम, धातुओं को आपस में तब्दील करने के बारे में हमें बताएं, आपकी तहकीकात से क्या नतीजा हासिल हुआ?
आज का हालात मुझे अपनी तहकीकात पर काम करने की ज्यादा मोहलत नहीं दे रहे हैं कि मैं अपनी तहकीकात को पाया तकमील तक पहुंचा सकूं। ये काम अरस्तु के उन्हीं चार मकूलों पर मबनी है जिनका जानना तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तमाम धातुओं के लिए कुछ जाहिरी और कुछ बातनी खसूसियात का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर दर मुर्द तला, उसकी जाहिरी खसूसियात गर्म और मरतूब है जबकि उसकी अंदरूनी खासियत सर्द और खुश्क है, जबकि चांदी का मामला बरक्स है, यानी उसकी जाहिरी खासियत सर्द और खुश्क है जबकि अंदरूनी खासियत गर्म और मरतूब। अब अगर तुम चांदी को सोने में तब्दील करना चाहो तो जरूरी है कि सोने की बातनी खसूसियात को चांदी में पैदा करो, और इस काम के लिए तुम्हें एक मादे बनाम अक्सीर की जरूरत पड़ेगी जिसको अभी तक कोई हासिल नहीं कर सका है।
अगर ऐसा हो जैसा आपने फरमाया है और अगर कोई शख्स उस मादे को हासिल कर ले तो बेशक वो शख्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी होगा।
जो कोई भी इल्म की राह पर गामजन हो उसे चाहिए कि उसका तमाम इल्म व फिक्र खिदमत खल्क के लिए हो। इल्म कीमिया इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जहां तक धातुओं को एक दूसरे में तब्दील करने की बात है तो इसमें मेरी दिलचस्पी ये मालूम करने के लिए है कि धातुओं को एक दूसरे में तब्दील किया जा सकता है। अगर हम अजसाम से उनकी जाहिरी और बातनी खसूसियात यानी सर्द और गर्म और खुश्क और रतूबत को उनसे जुदा कर सकें तो हम उस आम जर्रे तक पहुंच सकते हैं जो कि तमाम मवाद की तौलीद का मंशा है। तमाम मादों में इस जर्रे का होना साबित है, सिर्फ मादे की जाहिरी और बातनी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। अगर हम इन खसूसियात को मुख्तलिफ तरकीब और मकदार के साथ असर नो तश्कील दें तो मुमकिन है कि हम एक नई चीज खसूसियात के साथ वजूद मिला सकें, और इन चार कैफियतों के मुख्तलिफ होने के इस माकूले ने अरसे से मेरे जहन को जकड़ रखा है اور مدت سے میں اس غور و فکر میں مصروف ہوں۔
سلام برادر۔
السلام علیکم عنوان بصری، خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید بیٹی خوش آمدید، تشریف رکھیں تشریف رکھیں۔
یہ کسب کار کا کون سا طریقہ ہے؟ تم کہاں غائب ہو اے مرد؟
آپ کہاں اور یہ جگہ کہاں؟ تشریف رکھیں۔
جانتے ہو تمہیں کہیں روز سے تلاش کر رہا ہوں۔
راستہ بھول گئے ہیں آپ؟
واہ واہ عنوان بصری، تم خوش قسمت ہو محمد کہ عنوان کے آنے سے تمہارا کاروبار خوب بڑھے گا۔ عنوان کے درہم و دینار کو استعمال کرو اور خوب عیش کرو۔
میرے عیش کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟
میرا فائدہ یہ ہے کہ پھر میں بھی تم سے فائدہ اٹھاؤں گا۔
مجھ سے؟
ہاں، لیکن کیا تم اقید جد پر ایمان نہیں رکھتے اور نہیں کہتے کہ لوگ آخر سما کے دور میں دوبارہ ظاہر ہوں گے؟ تو مجھے بھی چند دینار ابھی قرض دے دو، میں اسے تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔
ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم مجھے اس چیز کی ضمانت دو کہ آخر دور میں تم انسان کی شکل میں ہی ظاہر ہوگے۔ اگر تم اس دن بندر بن کر ظاہر ہوئے تو میں کیسے اپنے دینار واپس لوں گا؟
شاباش ہے تم پر، واقعی صادق آل محمد کے الفاظ تم پر درست آتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تم گفتگو میں باز کی طرح ہو۔
وہ تو مومن کی دکان میں گئے ہیں۔
مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو سارا کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔
تو پھر کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہو اب تک؟ دیکھو میرے عزیز دوست، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور ان کی اس قدر نزدیک ہوتا تو پہلے ہی دن جابر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر حاکم بصرہ کے حوالے کر دیتا۔
نہیں ہو سکتا، ابھی تک مجھے کوئی موقع نہیں ملا۔
کیسا موقع نہیں ملا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ حاکم بصرہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور وہ تمہارے باپ اور بھائی کو دار پر لٹکا دے؟
خدا کی قسم اگر ایسا ہوا تو تمہارا سر حاکم کے قدموں میں ڈال دوں گا۔
ارے نہیں، میں اور تم ایک ہی قماش کے ہیں، میری باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ جب تک میں کوئی پیغام حاکم بصرہ تک نہ بھیجوں گا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دیر نہ کرو، جتنی جلدی ممکن ہو جابر کا معاملہ حل کرو۔
نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا۔
تم یہیں ٹھہرو، میں سب حالات کی سنگن لے کر آتا ہوں۔
میں نے کچھ دن پہلے سنا تھا کہ روم کے دربار سے کچھ لوگ جابر بن حیان کو لینے خراسان گئے تھے تاکہ اسے اپنے ملک واپس لا سکیں اور اس کے علم و تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں اور اسے قید سے دوسری قید، ایک شہر سے دوسرے شہر مارا مارا پھرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ مشکل دور ہو جائے گی۔
انشاءاللہ۔
بہت بہتر ہے عنوان، کوفہ کیسے آنا ہوا آپ کا؟
در حقیقت اب بصرہ ہمارے لیے جائے امن نہ تھا اور ہمیں مجبوراً ہجرت کرنی پڑی، اور دوسری طرف زرارہ سے ملنا بھی ضروری تھا تاکہ میرے پاس جو احادیث محفوظ ہیں اسے دے سکوں اور وہ انہیں محفوظ کر سکے۔
بہت خوب، ان احادیث کو اس تک پہنچنا چاہیے، لیکن خلیفہ کے آدمی اور کارندوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ زرارہ کی تلاش میں ہیں تو وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ خلیفہ نے ہر حال میں اس کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے میں نے زرارہ کے ٹھکانے کو سب سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوفہ کے لوگوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان میں سے اکثر سونے کے ایک سکے کو دیکھ کر اپنے خالق کے منکر ہو جاتے ہیں، تو وہ زرارہ کے ٹھکانے کو کہاں مخفی رکھیں گے؟
ख्याल है उनके दरमियान किसी अहम खबर का तबादला हुआ है।
कौन सी खबर?
आप कारवां सरा में मेरा इंतजार करें, वहीं आता हूँ।
बहुत अच्छा, हम आपका इंतजार।
जरूर।
ये सब क्या है?
जलाने का मादा है। यह मादा इन कागजों को जलने या बोसीदा होने से रोक देगा।
नामुमकिन।
तुम इसको आजमा सकते हो, अलबत्ता इनके तैयार होने के बाद।
ये किस काम आते हैं?
ये कागज मेरे मौला जाफर इब्न मोहम्मद की अहदीस रवायत लिखने के काम आते हैं, ताकि आइंदा लोगों तक पहुंच सकें।
तो फिर इससे क्या होगा?
ये अहदीस इंसानों की दुनिया व आखरत में सादत का बाइस हैं। ये अहदीस आइंदा नस्लों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में हिदायत हासिल करें।
इन्हें कागज के टुकड़ों के जरिए?
हाँ, मैं ये कागज तैयार करके उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जिनकी जिम्मेदारी इन अहदीस को जमा करने और लिखने की है।
इन कागजों से ज्यादा इन अहदीस के बारे में तुम्हारी बातें मुझे बहुत हैरतअंगेज लग रही हैं।
तुम ये अहदीस सुनना चाहते हो?
मेरी बदबख्ती इन अहदीस के सुनने से बरतरफ होने वाली नहीं है।
हाँ, आज मुझे कुछ तुम बताना चाहते थे।
मैं? हाँ नहीं, कोई अहम बात नहीं थी। यानी
अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो मैं मजबूर नहीं करूंगा।
दरअसल हकीकत यह है कि मैं इस दरबदरी से थक गया हूं। मैं चाहता हूं कि जल्द अज जल्द मालो दौलत हासिल करूं और अपनी जिंदगी शुरू करूं, और मेरा खानदान जिस गुरबत में गुजारा कर रहा है उसे उस गुरबत से निजात दिलाऊं।
मेरा ईमान है कि इस सफर के इख्तिताम पर तुम्हें इन चीजों से कहीं बेहतर चीज हासिल होगी।
के खेल से अब थक गया। मुझे जल्द अज जल्द जाबिर का काम तमाम कर लेना चाहिए, इससे पहले कि उसके शागिर्द आ जाएं।